ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जाय उदिरहे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर्वत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो राम नवमी के अवसर पर अभी राम कथा हो रही है, तो आज राम भगवान के जो है रामायण में नारद मुनि व्यासदेव जी को जो है राम भगवान के 16 गुणों का वर्णन करते हैं, तो उसका आज उल्लेख करेंगे। तो भागवतम से जो है 9वां स्कंद अध्याय 11 भगवान रामचंद्र का विश्व पर जय करना, तो इसमें से श्लोक नंबर 23 लेंगे। पुरुषो राम चरितम श्रवणे रूप धारयन् आनुषं स परो राजा कर्म बंधैर्विमुच्यते। पुरुषः कोई व्यक्ति रामचरितम भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों से संबंधित कथा को श्रवणे कानों से उपधारयन श्रवण करके आनु संशय परा ईर्ष्या से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। राजन हे राजा परीक्षित कर्म बंधौ कर्म बंधन से विमुच्यते मुक्त हो जाता है। अनुवाद तथा तात्पर्य इसलिए इसी भक्तिदान स्वामी स्वरूपात की अनुवाद। हे राजा परीक्षित जो भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को कानों से सुनता है वह अंततो गत्वा ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा और फल स्वरूप कर्म बंधन से छूट जाएगा। तात्पर्य इस जगत में हर व्यक्ति किसी न किसी से ईर्ष्या करता है, यहां तक कि धार्मिक जीवन में भी यदि कोई भक्त आध्यात्मिक कार्यों में आगे बढ़ चुका होता है तो अन्य भक्त उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसा ईर्ष्यालु भक्त जन्म मृत्यु के कारण से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता। जब तक कोई जन्म मरण के बंधन से पूर्णतया मुक्त नहीं जाता तब तक वह सनातन धर्म में प्रविष्ट नहीं हो सकता। देह की उपाधियों से प्रभावित होकर मनुष्य ईर्ष्यालु बनता है, किंतु मुक्त भक्त को शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, अतएव वह दिव्य पद पर पूर्णतया स्थित रहता है। भक्त किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं से भी नहीं, क्योंकि भक्त यह जानता है कि भगवान उसके परम रक्षक है, अतएव वह सोचता है तथा कथित शत्रु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इस तरह भक्त अपनी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त रहता है। भगवान कहते हैं, ए यथा माम प्रपद्यन्ते ताम ततस्व भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार जिस अनुपात में मेरी शरण में आता है उसी के अनुसार मैं उसकी रक्षा करता हूँ। अतएव भक्त को पूर्णतया ईर्ष्या विहीन होना चाहिए और विशेष रूप से अन्य भक्तों से उनसे ईर्ष्या करना महान अपराध है और यह वैष्णव अपराध कहलाता है। जो भक्त निरंतर श्रवण कीर्तन में लगा रहता है वह निश्चित रूप से ईर्ष्या रोग से मुक्त हो जाता है और इस तरह भगवत धाम जाने का प्राप्त बन जाता है, पात्र बन जाता है। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण बलराम जी का ब्रह्मोत्सव 13-14 को कार्यक्रम है। तो 1975 में श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण बलराम जी का जो मंदिर का उद्घाटन किया था। तो यहाँ आप देखते हैं कि भागवतम में नवम स्कंद में परीक्षित महाराज उनको सुखदेव गोस्वामी बता रहे, हे राजा परीक्षित, जो भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को कानों से सुनता है वह अंततो गत्वा ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा और फल स्वरूप कर्म बंधन से छूट जाएगा। तो यहां क्या बता रहे, ईर्ष्या का रोग कौन सा रोग है अभी किसी को सबको दिखाई दे रहा ना, कोई रिपीट? अच्छा, ईर्ष्या का रोग, थोड़ा रिपीट करेंगे थोड़ा दिमाग में रहेगा। तो आप देखते हैं कि इस भौतिक जगत में हम लोग आए हैं इसी रोग के कारण। कृष्ण भूली जीव अनादि भयर्मुख अतएव माया दे संसार दुख। तो कृष्ण भगवान से ईर्ष्या करके हम लोग इस भौतिक जगत में आए हैं। तो भगवान ने कहा चलो यहां जाके अपना जो भी गेम खेलना खेलो, है कि नहीं? तो भौतिक जगत में जितने भी जीवात्माएं हम देखते हैं जो भी भोग कर रहे वो भगवान से विमुख होके क्या कर रहे, यहां अपना भोग लेने का प्रयास कर रहे। तो यहां सुखदेव गोस्वामी जो है ईर्ष्या को क्या कहते हैं, एक रोग की तुलना करते हैं। और जो व्यक्ति राम भगवान के चरित्र उनके कथाओं और उनके गुणों का श्रवण करता है तो ऐसे व्यक्ति ईर्ष्या से मुक्त हो सकता है। तो ये एक बद्ध जीवात्मा के 6 जो है ये है क्या है, बीमारियां प्रमुख, काम क्रोध लोभ मद मोह और ये ईर्ष्या। तो ये ईर्ष्या जो है हम देखते हैं कि आज इतना समय नहीं कि इसके ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रकाश डाल दे, पहले तो आप लोगों ने बहुत बार श्रवण किया होगा। तो महाभारत के युद्ध के पहले ही जो है आप देखते हैं कि कृष्ण भगवान वहां गए थे हस्तिनापुर और उन्होंने दुर्योधन से अनुरोध किया, बस आप पांडवों को 5 गांव दे दो, आपसे वो कुछ बिल्कुल ईर्ष्या नहीं करते। तो युधिष्ठिर महाराज को क्या कहा जाता है, युधिष्ठिर महाराज का एक नाम है अजात शत्रुवत। क्या है? अजात शत्रुवत, यानी उनका कोई शत्रु पैदा हुआ नहीं, लेकिन इस भौतिक जगत में प्रभुपाद जी कहते हैं कोई ना कोई अपना शत्रु बन जाता है। आप कितने भी साधु संत हो फिर भी लोग आपके शत्रु बनेंगे। तो लेकिन दुर्योधन आप देखते कि वो इतना ईर्ष्या करता था कि उसने कहा कि सुई की नोक, अभी आप अनुमान कर सकते कि ऐसी तो कोई जमीन होती ही नहीं, लेकिन उसने वो भी नहीं छोड़ा, कहा कि मैं इतनी भी जमीन नहीं दूंगा। तो फिर कृष्ण भगवान ने कहा दुर्योधन को, जो मेरे भक्तों से ईर्ष्या करता है वो मुझसे खुद से ईर्ष्या करता, ये याद रखना। तो भगवान ने उसका 56 भोग तो लिया ही नहीं, सीधा जो विदुर जी के घर चले गए। तो भक्ति में आने के पश्चात भी यहाँ प्रूपा जी तात्पर्य में बताते हैं कि भक्तों में भी हम देखते हैं कि जो निम्न श्रेणी के भक्त होते हैं जिनको प्राकृत भक्त कहा जाता है, तो ऐसे भक्तों के अंदर कुछ ईर्ष्या की भावना होती है। तो अगर हम भक्ति में प्रगति नहीं करेंगे तो हम इसी स्तर पर रहेंगे। तो जो भक्ति में प्रगति कर रहा है ऐसे व्यक्ति के प्रति हमें बिल्कुल ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार जब भी हम इस ईर्ष्या को, इस बीमारी को निकालते हैं, तो प्रभुपाद जी बताते हैं जब एक व्यक्ति निश्चित इस रूप से ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाता है और इस तरह वह भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। आप देखते हैं कि प्रह्लाद महाराज, अब उसके पिताजी आप जानते हैं हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु ने कौन सा मेथड अप्लाई नहीं किया होगा, है कि नहीं, प्रह्लाद महाराज का वध करने का, एक से एक प्रकार के जो है उन्होंने प्रकार से प्रह्लाद का वध करने का जो है प्रयास किया, लेकिन प्रह्लाद के अंदर कभी भी उनके मन में ईर्ष्या की भावना नहीं हुई। हालांकि जब हिरण्यकशिपु का वध किया भगवान ने, नरसिंहदेव ने, तो नरसिंहदेव ने जो है प्रह्लाद महाराज से अनुरोध किया कुछ वरदान मांगो, तो अभी आप देख सकते हैं कि वो कह सकते थे ठीक है मैं ठीक हूं, अभी कोई वरदान नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मेरे पिताजी को मुक्त कर दो। अभी आप विचार कर सकते हैं कि उनके पिताजी ने उनको इतना कष्ट पहुंचाने के बावजूद भी उन्होंने बिल्कुल जो है उनके प्रति ईर्ष्या नहीं किया नहीं। हालांकि हरदास ठाकुर का भी उल्लेख आता है कि जब भी महाप्रकाश लीला हो रही थी तो उस वक्त महाप्रभु उनसे कह रहे थे कि देखो जब ये जो है यवन लोग आपको 22 बाजार में पीट रहे थे चाबुक से, मैं सुदर्शन लेके उनका गला काटने वाला ही था, लेकिन आप जो है वो आपकी प्रार्थना से मैं, मेरे हाथ से सुदर्शन जो है वो निकल नहीं पाया। तो इतना जो है आप देखते कि हरदास ठाकुर इतना उन्होंने उनके जो है आप देखते ही दौरा मार खाने के बावजूद भी जो है उन्होंने कभी उनके प्रति ईर्ष्या नहीं किया। तो हमें प्रयास करना चाहिए। तो नारद मुनि जो है व्यास देव को जो है भगवान रामचंद्र के 16 गुणों का वर्णन करते हैं, तो आज संक्षिप्त में थोड़ा बहुत इनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। ये 16 गुण क्या है, गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्य, दृढ़ प्रतिज्ञ, चरित्रेण युक्त, सर्वभूतेषु हित, विद्वान, सामर्थ्यशील, प्रियदर्शन, आत्मवान, जित क्रोध, शरणागत दायक, अनसूयक, बिभ्यति देवा। तो ये 16 गुणों का वर्णन जो है ये नारद मुनि करते हैं, और ऐसे वाल्मीकि रामायण में भी जो है वाल्मीकि ने भी इसमें से 6 गुणों का वर्णन किया है। तो अभी एक एक में थोड़ा संक्षिप्त प्रयास डालने का प्रयास करेंगे। गुणवान, इसका अर्थ यह है कि ज्ञानी वह सारे सद्गुणों से परिपूर्ण, तो सारे जीवों के प्रति आदर समान, और बुजुर्गों के जो आदेश का जो है बुजुर्गों के आदेश का पालन करना। तो गुणवान आप देखते हैं कि ऐसे रूप गोस्वामी जो है श्रीमद् भागवतम में भगवान के, विष्णु भगवान के 60 गुणों का वर्णन करते हैं, लेकिन ऐसे देखा जाए तो भगवान के जो गुण है भागवतम में उल्लेख आता है कि जैसे समुद्र में जो लहर आती है उस प्रकार भगवान के अनंत गुण है, और ऐसे श्री जो है अनंत वो भी ये क्या कर रहे हैं कि अनादिकाल से 1000 पंड से भगवान का गुणों का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो राम भगवान के जो गुण है आप देखते हैं कि बताया जाता है कि प्रतिदिन सुबह राम भगवान सुबह उठते ही क्या करते थे, जाके अपने माता पिता और बाकी जो उनके जितने बुजुर्ग थे उनका पहले वे आशीर्वाद लेते थे, और हर एक व्यक्ति को जो है उसकी योग्यता के अनुसार, उस व्यक्ति के अनुसार वो क्या करते थे, आदान प्रदान करते थे। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति का एक गुण या चरित्र किस प्रकार बन जाता है, तो ये माता पिता के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसके जीवन में बचपन में किस प्रकार संस्कार करते हैं। तो अगर अपने जो है बच्चों को अगर अच्छे संस्कार डालने हैं, अच्छे गुण उनमें लाना है, तो उनके अंदर संस्कार करना जरूरी है। तो आज कलयुग में हम देखते हैं कि कलौ शूद्र संभव, लोग क्या हैं कि कोई संस्कार करते नहीं। फिर आगे वीर्यवान, स्वस्थ संयमी और बलवान। तो आप देखते कि राम भगवान जो है, अगर पूरे रामायण में हम देखते हैं कि राम भगवान ने बहुत सारे अनगिनत असुरों का वध किया, लास्ट में रावण का वध किया था। तो पहले उन्होंने ताड़क, सुबाहु, मरीच, दुंदुभी, खर, दूषण, इनका भी वध किया था। तो अभी किसी को मालूम है दुंदुभी कौन था? दुंदुभी का किसने वध किया था? कितने लोगों ने रामायण पढ़ा है इधर? दुंदुभी का किसने, आप लोगों ने तो नहीं किया मैं जानता हूं। तो दुंदुभी राक्षस का किसने वध किया था? ए भगवान, रामायण। चलो ठीक है, किसी को मालूम नहीं तो थोड़ा आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो, लास्ट में बताता हूं। तो ऐसे बताया जाता है कि उसकी जो हड्डी है उसका एक पहाड़ बन गया था। तो बताया जाता है कि राम भगवान का, उनकी ताकत देखने के लिए किसने कहा था उनको, उस हड्डियों को जो है लात मारो, किसने कहा था कोई बता सकता है? दो भाई थे वानर, कौन थे? हाँ, सुग्रीव और वाली। तो सुग्रीव ने कहा था थोड़ा इसको लात मार के दिखाओ। तो राम भगवान ने एक लात मारा तो 10 योजना दूर जाके वो हड्डी जो है गिर गई। तो वली के जो बलि जो है सुग्रीव, उसके जो भाई थे बलि, वली जो भी है, हाँ, उसने दुंदुभी का वध किया था। तो आप देखते हैं कि जो राम भगवान का उल्लेख आता है कि जब वो यहाँ थे नासिक में, वहाँ तपोवन में रावण के 14,000 राक्षस और जो है खर और दूषण, बस 2 प्रहर में राम भगवान ने उनका वध कर दिया था। तो इस प्रकार वीर्यवान का मतलब है कि अकेले राम भगवान जो है वो समर्थ थे पूरे लंका को मारने के लिए। लेकिन आप देखते हैं कि भगवान जो है वो अपने भक्तों को ये देना चाहते यश। तो आगे धर्मज्ञ, धर्मज्ञ का अर्थ होता है कि जिनको पूरे धर्म शास्त्र का ज्ञान है। तो आप देखते हैं कि एक बहुत अच्छी कथा आती है रामायण में कि राम भगवान ने अपने दरबार में बाहर एक घंटी लगा के रखी थी और बताया था कि अगर किसी भी व्यक्ति को कभी भी कुछ दुख है वो आके सिर्फ घंटी बजा दे, फिर हम क्या करेंगे, दरबार बुलाएंगे और उनको क्या करेंगे, जस्टिस देंगे। तो एक बार की ऐसी घटना है, तो हमें संक्षिप्त में बता रहा हूँ। एक कुत्ता आके घंटी बजा रहा था, तो राम भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, अरे देखो जाके कौन घंटी बजा रहा है। तो लक्ष्मण जी आए, उन्होंने देखा है कुत्ता घंटी बजा रहा है। तो उन्होंने कुत्ते से कहा, अरे बदमाश क्यों घंटी बजा रहा है? तो कुत्ते ने कहा कि मैं राम से मिलना चाहता हूँ। तो लक्ष्मण ने पूछा क्या तकलीफ है? तो उसने कहा मैं राम से ही बताऊंगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, चलो अंदर। तो इस प्रकार जो है, जैसे राम के दरबार में कुत्ता अंदर प्रवेश कर गया, तो वो कुत्ते ने फिर राम भगवान से बताया कि देखो आपके यहाँ अयोध्या में एक ब्राह्मण है सर्वार्थ सिद्ध। आज मैं सरायु के पास बैठा था और ये जैसे स्नान करके आ रहा था तो उसने मेरी बहुत बुरी तरह पिटाई की, आप देख लो मेरे शरीर में इतने सारे घाव। तो आप मुझे आज जो है, मैं चाहता हूँ कि आप उसको उचित प्रकार से दंडित करो। तो राम भगवान ने फिर लक्ष्मण से कहा कि चलो जाओ उस ब्राह्मण को ले आओ। और यहाँ उन्होंने सब मंत्रियों से पूछा, अनुरोध किया कि ब्राह्मण तो ऐसे तो हम कुछ जो है शिक्षा दे नहीं सकते, तो अभी आप बताओ कि इस ब्राह्मण को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। तो अभी सब लोग सोच में पड़ गए, अरे अभी इस ब्राह्मण को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए एक कुत्ते को मारने के लिए। तो सब लोग सोच में पड़ गए थे मिनिस्टर्स। तो संध्या हो रही थी, ब्राह्मण को भी ले आए थे लक्ष्मण जी। तो कुत्ते ने सोचा, किसी के मुंह से कुछ जवाब नहीं निकल रहा है। तो उस कुत्ते ने कहा राम भगवान से, आप क्या करो कि इस ब्राह्मण को, यहाँ एक गांव है तो उस गांव का मठाधीश बना दो। तो सब लोग बिल्कुल हैरान हो गए, अरे एक व्यक्ति ने जो है गलत काम किया, उसको इतनी बड़ी जो है पदवी क्यों? तो उस कुत्ते ने कहा कि क्योंकि मैं पिछले जन्म में मैं भी एक जो है ब्राह्मण था और वहाँ का मठाधीश था, मैं भी इसकी तरह बहुत सारे हरकतें करता था, तो इसको भी पता चल जाएगा। तो राम भगवान ने कहा चलो ठीक है, सुबह से शीघ्रम तो उस ब्राह्मण को एक पालकी में बिठा के वहां से उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो भी आप देखते हैं कि राम भगवान जो है जब ही उन्होंने शिव धनुष तोड़ा था, क्योंकि वो धर्मज्ञ है, वो जानते हैं कि शिव जी का धनुष है, लेकिन वो जो है उनके गुरु के अनुरोध करने पर उन्होंने शिव धनुष जो है उसको तोड़ा था। और इसके अतिरिक्त जो है हिरण, जब ही सीता जी ने कहा कि मुझे ये हिरण बहुत अच्छा लगता है, लक्ष्मण जी ने कहा अरे मैं जानता हूँ कि इस सृष्टि में ऐसा कोई हिरण है नहीं, मैं पूरे 84 लाख योनियों को जानता हूँ, ये कुछ अलग ही है, ये कुछ राक्षस का कुछ खेल है। लेकिन आप देखते कि फिर भी राम भगवान जो है इस लीला को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो उस हिरण के पीछे गए। तो राम भगवान जो है पूरा वो है, उनको धर्म का ज्ञान है, इसलिए उनको कहा जाता है धर्मज्ञ। फिर कृतज्ञ, कृतज्ञ का अर्थ है कि विनम्रता और अपनत्व से भरा एहसानमंद। तो रामलीला में इतनी सारी लीलाएं हैं कि राम भगवान हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया कि जटायु, हम देखते हैं कि जटायु जो है उसने अपना पूरा प्रयास किया रावण को मारने का या उसको रोक के रखने का, लेकिन वो कर नहीं पाए। तो जब ये लक्ष्मण और राम भगवान सीता की खोज में निकले थे और जब ही उन्होंने जटायु को देखा और उनको पता चला कि अभी जटायु शरीर छोड़ने वाला ही है, तो राम भगवान ने उनका जटायु को क्या किया, अंतिम संस्कार किया। और इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जब ही राम भगवान अयोध्या आए तो राम भगवान ने हनुमान जी को बहुत सारे प्रलोभन दिए, आपने बहुत सारा मेरे लिए कार्य किया, लेकिन हनुमान जी तृप्त नहीं थे। तो हनुमान जी से राम भगवान ने कहा ठीक है मैं सिर्फ आपको एक आलिंगन दे सकता हूँ, जैसे कृष्ण भगवान ने गोपियों से कहा था कि न पा रहे हम, मैं आप लोगों से कुछ, आप लोगों ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो हनुमान जी को भी राम भगवान ने कहा था कि मैं आपको एक सिर्फ आलिंगन दे सकता हूँ। उसके बाद में आता है सत्य वाक्यो, सच बोलना, बोलने वाला, ईमानदार। तो हम देखते हैं कि राम भगवान जो है उनके पिताजी के अनुरोध करने पर, आप देखते हैं कि राम भगवान का अभिषेक का सब कुछ तैयारी हुआ था, लेकिन एक कोई ईर्ष्यालु एक स्त्री थी, उसने कैकेयी के कान भर दिए और बस कुछ ही क्षणों में क्या हो गया, सब जो है वो गेम पलट गया। और जो है दशरथ जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो शरीर त्यागने वाली है, लेकिन कैकेयी जो है वो इतने पत्थर दिल वाली बन गई तो उसने कुछ देखा भी नहीं। लेकिन राम भगवान जो है अपने पिताजी के आदेश के अनुसार जो है हम देखते हैं वो निकल गए। तो सत्य वाक्यों में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है रामायण में, जब ये युद्ध होने वाला ही था, युद्ध से पहले जब ही विभीषण आए, उन्होंने शरणागत यानी भगवान से शरणागत हुए, तो उस वक्त भगवान ने कहा था सकृदेव प्रपन्नयस् तव अस्मीति याचते। तो राम भगवान ने एक ऐलान किया था अभी इस वक्त कोई भी व्यक्ति मेरा आश्रय लेता है तो ऐसे व्यक्ति को मैं निर्भय प्रदान करने के लिए तैयार हूं। तो सत्य वाक्य का मतलब है कि एक व्यक्ति अपना जो भी उसके मुंह से वचन निकलता है उसको रखता है। फिर आगे है दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञ का मतलब है एक व्यक्ति, जो व्यक्ति वो जो भी ये करता है संकल्प करता है वो उससे कभी हटता नहीं है। तो राम भगवान ने क्या संकल्प किया था, एक पत्नी व्रत। आप देखते हैं कि राम भगवान उनको कहा जाता है कि कौन से पुरुष कहा जाता है, हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम। तो क्योंकि उन्होंने जो भी संकल्प किया था उन्होंने रखा, तो इस प्रकार आप देखते हैं कि राम भगवान जब भी वो वनवास में भी जा रहे थे, हालांकि सीता के लिए कोई ऐसे नियम नहीं था, लक्ष्मण जी के लिए भी, तो वो लोग अपने इच्छा से गए थे। तो राम भगवान जो है उनके एक गुण बताया गया है दृढ़ प्रतिज्ञ, जो भी वो एक बार संकल्प कर लेते हैं तो उससे वो जो है पीछे नहीं हटते। तो इसको भगवद्गीता में कृष्ण भगवान बताते हैं व्यवसायत्मिक बुद्धिर एक कुरुनंदन। तो जो व्यक्ति भक्ति के पथ पर भी रहता है तो उसका भी जो है लक्ष्य एक होता है। तो ये हमें सीखना चाहिए किस प्रकार भक्ति में भी दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। चरित्रेण युक्त, चरित्रेण युक्त का तो है अर्थ है कि सदाचारी, अच्छा व्यवहार या विचार। तो एक व्यक्ति के चरित्र किससे बनते हैं, जैसे मैंने बताया संस्कार, तो एक होता है बीज संस्कार। अब देखते हैं कि आजकल मार्केट में आप जाते तो फल देखते हैं या सब्जी देखते हैं, तो वो सब्जी जैसे प्रभुपाद जी बताते थे फल है ना परिचय थे, एक फल को देखने से पता चलता है कि पेड़ कितना अच्छा होगा। तो इसी प्रकार एक व्यक्ति का चरित्र, उसका व्यवहार, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक व्यक्ति वो चरित्रवान दिखता है जब तक वो बात नहीं करता, जब वो बात करता है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति का चरित्र क्या है। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जैसे वो अपना चरित्र दिखाते हैं लेकिन अंदर से वैसे नहीं होता है। तो इसलिए इस भौतिक जगत में हमें मालूम होना चाहिए, किसी एक अंग्रेजी में कहा होता है, इफ यू वॉन्ट टू नो हु यू आर लेट मी नो हु योर फ्रेंड्स आर। अगर आप जानना चाहते कि आप कौन है तो आप बताओ कि आपके मित्र कौन है। आप देखते हैं कि दुर्योधन का पहले नाम था सुयोधन, लेकिन दुर्योधन का चरित्र क्यों खराब हो गया, मामा शकुनी। इस भौतिक जगत में बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं। कंस भी आप देखते हैं, कंस भी एक अच्छे ही व्यक्ति थे। जब भी वसुदेव पहले पुत्र को लेके गए थे, वसुदेव के पहले पुत्र का नाम क्या था, किसी को नाम याद मालूम है, देवकी के आठ पुत्र, पहला पुत्र कौन था, वसुमान। तो कंस ने कहा नहीं नहीं नहीं, इस पहले बच्चे से मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन कंस के जितने भी एडवाइजर्स थे बस ये सब राक्षस थे, चरित्रहीन थे, तो उन्होंने कंस का जो है कान भर दिया। तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति का चरित्र किससे होता है, उसके संगति से, उसके जो है संगति से होता है। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। फिर आगे आठवां जो गुण है सर्वभूतेषु हित, सब प्राणियों का जो है रक्षक मददगार। तो ये देखते हैं कि इस भौतिक जगत में बहुत ऐसे कम लोग मिलेंगे आज इस भौतिक जगत में कि सबके हितैषी हो। एक वैष्णव का भी एक लक्षण है पर दुख दुखी। तो सर्वभूतेषु हित का मतलब है कि राम भगवान जो है वो जो राज कर रहे थे तो इसमें वो सबका हित देख रहे थे। आज इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि भारत का भी इलेक्शन होने वाला है, हाँ आप देखते हैं कि वो बहुत सारे प्रलोभन देते हैं कि नहीं, तो ऐसे नहीं। एक से जो सच्चा राजा होता है वो हर एक व्यक्ति का जो है वो हित का सोचता है। जैसे एक राजा थे जिन्होंने 48 दिन उपवास किया था, रामथीदेव, ऐसे बताया था है को इतने ने उदार ये भक्त थे कि सबके हृदय में वो भगवान को देखते थे। तो ये उत्तम अधिकार के लक्षण है। तो जब ये एक व्यक्ति के अंदर जो है अन्यों के प्रति भावना या वो देखता है और उसके अंदर जब भी परमात्मा भगवान को देखता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यासिनी सुनिचवे सुपाकिच पंडित समदर्शन। तो इस प्रकार राम भगवान के जितने भी हम देखते हैं कि कार्यकलाप है, हाँ उन्होंने जो भी कार्य किए हैं वो जो है सब जो है जितने भी जीव है उनके हित के लिए उन्होंने कार्य किया। फिर आगे विद्वान, बुद्धिमान और विवेकशील। तो जैसे मैंने बताया कि विवेकशील का मतलब है कि एक व्यक्ति देश काल और पात्रता के अनुसार वो क्या करता है कि एक डिसीजन लेता है या बात करता है। तो आप देखते हैं कि जब ये राम भगवान सेतु बना रहे थे तो उस वक्त ये वानरों के अलावा गिलहरियां, फिर बहुत सारे पंछियां वो भी कार्य कर रही थी। तो ऐसे बताया था कि एक गिलहरी वो भी ला के पत्थर डाल रही थी और जितने भी वानर थे हनुमान जी वो बड़े बड़े पहाड़ ला के डाल रहे थे। ऐसे उल्लेख आता है वायु पुराण में, हनुमान जी वृंदावन भी आए थे गोवर्धन ले जाने के लिए। तो हनुमान जी जब ये आए तो गिरिराज जी को उठाने का प्रयास किया तो गिरिराज जी को उठा नहीं पाए। ये बड़ी लंबी लीला है। तो इस प्रकार हनुमान जी आप बाके वानर ला के क्या कर रहे थे, वो वहाँ बड़े बड़े पहाड़ डाल रहे थे। तो जब एक बार हनुमान जी जब लैंडिंग कर रहे थे वहाँ नीचे गिलहरी थी, तो हनुमान जी ने कहा अरे तुमको दिखता नहीं मैं इतना बड़ा ये व्यक्ति हूँ, आप तो यहाँ बिल्कुल फ्लैट हो जाओगे, चलो हटो। तो राम भगवान देख रहे थे तो हनुमान जी का थोड़ा उनको थोड़ा नम्र करने के लिए तो राम भगवान ने कहा देखो एक व्यक्ति यथाशक्ति अपना कार्य दे रहा है, अगर आप देखते कि गिलहरी का आपके कार्य में आपके सेवा में कुछ ज़्यादा ज़्यादा फर्क नहीं, जैसे आप देखते हैं कि हाथी हो एक चींटी हो वो जीवात्मा का साइज उतना ही होता है, आप देखते कि एक हाथी हो एक चींटी हो जीवात्मा का साइज उतना ही है, तो उसी प्रकार आप देखते हैं कि हम लोग अलग अलग शरीर में हैं। तो फिर इस प्रकार हनुमान जी को जो है राम भगवान ने समझाया। तो ये है विद्वान एक व्यक्ति होता है वो क्या करता है देश काल स्थिति के अनुसार, हाँ अंग्रेजी में कहते हैं विन विन, सबको वो प्रसन्न करता है। फिर आगे सामर्थ्यशाली, सामर्थ्यशाली का मतलब है सभी कार्य करने में समर्थ। अभी आप देखते हैं कि राम भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है हेल्प लेने की, लेकिन राम भगवान जो है वो क्या करते हैं वो भक्तों को श्रेय देना चाहते। आप देखेंगे कि रामलीला क्या है कि इसमें राम भगवान जो है वो अपने भक्तों को श्रेय दे रहे हैं। ऐसा देखा जाए तो राम भगवान जो है वो खुद कुछ भी कर सकते थे, उनकी माया शक्ति विष्णु शक्ति से वो कुछ भी करने के लिए समर्थ थे, लेकिन राम भगवान ने क्या किया अपने पार्षद जितने जो वानर सेना थी उनको उन्होंने शक्ति प्रदान की। ऐसी भी एक लीला आती है कि जब ये सेतु का कार्य निर्माण चल रहा था तो बड़े बड़े वानर लाके बड़े बड़े जो पत्थर वहाँ उसमें राम लिख के जब समंदर में डाल रहे थे सब पत्थर तैर रहे थे। तो एक दिन की ऐसी बात है, किसी को मालूम है कि सेतु बनने में कितने दिन लगे, यहाँ कोई इंजीनियर है सेतु निर्माण वाला चे एक इंजीनियर कितने कितने दिन लगे आप थे? अच्छा थोड़ा हम लोगों को थोड़ा बहुत रामायण मालूम होना चाहिए, किसी को मालूम नहीं ये राम सेतु बनने में कितने दिन लगे? हाँ कोई बता रहा है 5 दिन, ठीक है कोई 12 दिन, ये भगवान नहीं गलत, कोई कहते हैं 8 दिन, चलो अभी राम भगवान को पूछ लेते हैं। तो आप देखते हैं कि जब ये सब वानर लोग पत्थर ला के डाल रहे थे तो पत्थर तैर रहे थे तो राम भगवान भी चौंक गए, अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि पत्थर भी तैर रहे। तो इस लीला से हमें ये मालूम होना चाहिए कि भगवान जो है उनके नाम में ज़्यादा शक्ति है, भगवान से ज़्यादा नाम नामिनो भिन्नत्वम। अब आप देखते हैं कि राम भगवान के नाम में राम भगवान से ज़्यादा शक्ति है। तो जब ये सब पत्थर तैर रहे थे तो एक दिन क्या हो गया कि लंच ब्रेक था तो राम भगवान ने जाके सोचा चलो हम भी थोड़ा प्रयास करते हैं। तो राम भगवान ने एक पत्थर पर अपना ही नाम लिख दिया और देख रहे थे कोई देख तो नहीं रहा है तो ऐसे पत्थर फेंक दिया। तो हनुमान जी चुपचाप पीछे खड़े थे उतने दिखाई नहीं दे, तो हनुमान जी पीछे पीछे खड़े रहते राम के पीछे देखते कि राम भगवान क्या करने वाले हैं। तो जैसे पत्थर डाला तो तुरंत टुप करके नीचे चला गया, तो हनुमान जी बिल्कुल हंसने लगे जोर जोर से पेट पकड़कर। तो राम भगवान भी सोच में पड़ गए अरे हनुमान जी थोड़े धीरे से सब अभी सब इकट्ठे हो जाएंगे आप ऐसे क्यों हंस रहे। तो हनुमान जी ने कहा अगर आप किसी को त्याग देते हैं तो उसका डूबना निश्चित है, अगर आप किसी को त्याग देते हैं तो उसका डूबना भी अवश्य है। तो ऐसे बताया जाता है कि जब ही राम भगवान यहाँ सेतु बना रहे थे तो वहाँ रावण जो है सीता को बता रहा था देखो मेरे अंदर भी शक्ति है, हाँ मैं भी पत्थर को जो है वो क्या कर सकता हूँ तैरा सकता हूँ, वो सीता को अपनी शक्ति बता रहा था। तो ऐसे बताया जाता है कि रावण ने भी जो है राम का नाम लिख के जब पत्थर फेंका, क्योंकि उसने राम का नाम लेके पत्थर फेंका था इसलिए पत्थर जो है वो तैर गया। तो हमें मालूम होना चाहिए कि इसमें बड़ी शक्ति है। तो ऐसी एक और एक बहुत अच्छी लीला आती है कि जब ही राम भगवान का राजाभिषेक हो गया तो विभीषण भी गए थे और उनके साथ कुछ उनके पार्षद भी गए थे, अभी वो राक्षसगण थे उनको जो है अयोध्या कुछ अच्छी नहीं लगेगी, वो विभीषण से अनुरोध कर रहे थे हमको वापिस जाना है, तो अभी समंदर तो हमें रास्ता नहीं देगा, कुछ उपाय करो। तो विभीषण गए और उन्होंने जाके एक अश्वत्थ का पत्र लिया और उसमें राम का नाम लिख के उसको एक पोटली बना के उनके हाथ में दे दिया कि कहा कि देखो आप यहाँ से दक्षिण भारत में जाओ धनुष्कोटि, और जैसे आप समंदर प्रवेश करेंगे तो पानी आपके घुटने तक आएगा, लेकिन याद रखना ये हाथ में ही रखना पोटली और इसको खोलना मत जब तक लंका नहीं पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये फाइनल ऑर्डर दे दिया था। तो इस प्रकार वो सब हाथ में हाथ पकड़ के पांच लोग थे जा रहे थे लंका की तरफ। तो लंका दिख रही थी, लगभग एक दो किलोमीटर दूरी पर थी। तो किसी के मन में कुछ एक शंका आई, अरे इसमें क्या ऐसी शक्ति है जिससे ये पानी इतना कम हो रहा है। एक ने कहा अरे थोड़ा खोल के देखते लंका तो पहुंच गए। तो जिसके हाथ में था उसने कहा अरे नहीं 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 अभी पंगा मत लो, अभी भी बहुत पानी है, अगर समझो कुछ भी हो गया गया। राम नाम हाँ कोई बोलता नहीं, लेकिन हम जब इस शरीर को छोड़ेंगे तो सब लोग बोलने वाले राम नाम। हाँ हाँ 100% इसमें कोई शर्माने नहीं चाहिए। तो इस प्रकार क्या हो गया कि दूसरे के मन में भी शंका आई, उसने कहा नहीं नहीं मुझे भी देखना है। फिर तीसरे के मन में भी शंका आई, तो मेजोरिटी विंस है कि नहीं, अभी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो गया कि तीन लोगों ने झपट ही लिया और उसको खोल के देखा पोटली के अंदर, तो अश्वत्थ का पत्र था, तो हंसने लग गए। तो क्या हो गया, बस समंदर का पानी आ गया, वो सारे डूब के मर गए। तो वास्तविक में हमें भगवान के नाम में पूरा जो है विश्वास होना चाहिए। फिर शरणागत दायक, जैसे मैंने आपको बताया कि राम भगवान ने जैसे ऐलान किया था सकृद एव प्रपन्नो यस्त तव स्मृति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्य एतद् व्रतम मम। तो राम भगवान ने कहा था कि ये मेरा जो है एक व्रत, मैंने एक संकल्प कि कोई व्यक्ति मेरा अगर शरण ले लेता है तो मैं उसको शरण देने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे बताया था कि जब विभीषण आए थे तो सब लोगों ने कहा था नहीं 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 इसको आप बिल्कुल शरण मत देना, लेकिन हनुमान जी जानते थे विभीषण के बारे में, तो हनुमान जी का राय लिया राम भगवान ने। तो राम भगवान जानते थे, वो अपना खुद डिसीजन नहीं लेते थे। तो एक राजा भी होता है वो अपने मंत्रियों से डिसीजन लेता है कि नहीं। तो इस प्रकार राम भगवान ने हनुमान जी से पूछा आपकी राय क्या है, आप बताओ इसके बारे में। तो हनुमान जी जब भी लंका गए थे तो उन्होंने बस एक ही जगह तुलसी का पौधा देखा था, वो भी विभीषण के घर में। तो इस प्रकार जो है राम भगवान अच्छी तरह जानते थे कि विभीषण कौन है। तो राम भगवान जो है ऐसे बहुत सारी लीला है। एक बार इंद्र ने भी क्या किया था, सीता का अपराध किया था एक कौवे का रूप धारण करके, आप लोगों ने वो लीला सुना होगा। तो इस प्रकार अंत में जाके हम देखते कि इंद्र ने क्या किया, राम भगवान के शरण में आ गए, तो राम भगवान ने उनको फिर माफ कर दिया। फिर आत्मवान, मन पर अधिकार रखना, धैर्यवान व व्यसन से मुक्त, हाँ आत्म साक्षात्कारी पुरुष। आत्मवान का अर्थ होता है कि आत्मा के बहुत सारे गुण बताए गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ उनका और एक सद्गुण बताया है, हाँ आत्मवान का यहाँ ये यह है मन पर अधिकार। तो ये हमारा मन एव मनुष्यानाम कारण बंद मोक्ष है। भौतिक जगत में हम अपने मन के कहने पर भागते हैं, लेकिन राम भगवान जो है वो जानते हैं किस प्रकार धैर्यवान होकर कार्य लेना चाहिए, इसलिए उनका एक गुण है वो है आत्मवान। फिर आगे जित क्रोधो, इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोगों को बहुत जल्दी क्रोध आता है, कुछ भी हो जाए जल्दी क्रोध आ जाता है। महाभारत में भी एक उल्लेख आता है, एक बार जो है पांडव और जो है कौरवों के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, वो हर दिन अलग अलग पाठ पढ़ाते थे। तो एक दिन वो पाठ पढ़ा रहे थे, वो कह रहे थे कि एक को क्रोध नहीं करना चाहिए। तो सबको कह रहे थे भीम तुम बताओ, दुर्योधन तुम बताओ, अर्जुन, इस प्रकार अंत में युधिष्ठिर से कह रहे युधिष्ठिर आप बताओ। तो कहा गुरुजी मुझे समय लगेगा पाठ करने में, कुछ समय दे दो। तो अगले दिन कहा अरे युधिष्ठिर पाठ हुआ नहीं हुआ सर कल देखेंगे। तो इस प्रकार 7 दिन हो गए। अरे युधिष्ठिर पाठ हुआ कि नहीं? बोले सर अभी पाठ नहीं हुआ, थोड़ा इधर आओ। तो युधिष्ठिर को एक दे दिया, चाटा मार दिया, कहा मूर्ख ये सब पाठ कर सकते, तुम नहीं कर सकते। तो फिर उनको एक साक्षात्कार हुआ, मैं खुद ही क्रोध कर रहा हूं। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि क्रोध में आकर एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इस भौतिक जगत में अगर आप देखते हैं कि क्रोध के वश लोग क्या नहीं कर सकते, एक सच्ची घटना है कि नेपाल में राजवंश चलता था, अभी पता नहीं है कि नहीं। तो एक राजकुमार थे, तो ये कोई बॉलीवुड की हीरोइन से शादी करना चाहते थे। आप लोग जानते हैं बॉलीवुड, ये लोग सब वुड लकड़ी बनने वाले अगले जन्म में, तो पेड़ लकड़ी का मतलब पेड़, बॉलीवुड, हॉलीवुड का नाम दूसरा नाम है बॉलीवुड। तो क्या हो गया कि ये जो है राजकुमार, जब उनके माता पिता ने कहा कि नहीं आप इस लड़की से शादी नहीं कर सकते, वो बड़ा क्रोधित हो गया, घर के अंदर जाके रिवॉल्वर लिया और बस सबको उड़ा दिया, अंत में अपने भी आत्महत्या कर ली। तो ये क्रोध है तो इसके लिए लोग बहुत सारे अलग अलग जो है उपाय बताते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो है बहुत विनाशकारी हो सकता है। तो यहाँ आप देखते हैं कि राम भगवान के ऐसे रामायण में बहुत सारे उल्लेख आते हैं जहाँ राम भगवान ने अपने क्रोध को कभी प्रकट नहीं किया। तो एक ऐसी लीला आती है, जब ये किष्किंधा पहुंचे थे राम भगवान, तो उसी वक्त जो है चतुर्मास आरंभ हो गया। चतुर्मास पहले जमाने में क्या होता था कि चतुर्मास में भ्रमण नहीं करते थे। जब सीता की खोज में वो लोग वहाँ किष्किंधा पहुंच गए, तो सुग्रीव से जब भी दोस्ती हुई तो सुग्रीव ने कहा अभी 4 महीने के लिए अभी काम हॉल्ट है कि नहीं। तो 4 महीने हो गए लेकिन सुग्रीव कुछ वो बस अपने आनंद में था, लक्ष्मण बड़े क्रोधित हो रहे थे, तो लेकिन राम भगवान ने फिर भी अपना क्रोध नहीं दिखाया। तो इस प्रकार हम देखते हैं जित क्रोध हो, क्रोध के ऊपर जो है इसके ऊपर अपना जो है जीत पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमें अपना पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत में लोग कुछ ना कुछ आपको क्या करते रहेंगे, अंग्रेजी में कहते पोकिंग, कुछ ना कुछ खुजली करते रहेंगे। फिर अनसूयक, किसी की जो है निंदा न करने वाला, सकारात्मक। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि किसी को कहो अरे इस व्यक्ति के बारे में बताओ, वो तो एक बड़ा लेक्चर दे देंगे, है कि नहीं? किसी के बारे में अगर हम पूछेंगे तो एक बड़ा लेक्चर दे देंगे, ये व्यक्ति कैसा है। तो हम देखते हैं कि राम भगवान के एक अच्छे गुण में हम देखते हैं कि रामायण में कहीं ऐसे कहीं उल्लेख है नहीं कि राम भगवान की किसकी निंदा की हो। हालांकि लक्ष्मण हर समय क्रोधित होते थे, है कि नहीं? भरत आ रहा है, मैं अभी पेड़ के ऊपर खड़ा होकर देख रहा हूँ, सैनिक लेके आ रहा है, लेकिन राम भगवान ने बिल्कुल भरत की निंदा नहीं की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ये हैं घटनाएं हैं रामायण में जहां हम देखते हैं कि राम भगवान ने कभी किसी का, चाहे वो कैकेयी हो या जिसने कैकेयी को ब्रेन वॉश किया था, हालांकि कभी भी जो है उसका भी कभी राम भगवान ने उसके प्रति ईर्ष्या या उसकी निंदा नहीं की। तो ये 15वां गुण है। और अंत में बिभ्यति देवा, तो ऐसे बताया था है कि जब ही राम भगवान वहां पहुंच गए थे समुद्र के पास और लंका जाना था, तो राम भगवान ने सोचा चलो हम समुद्र देव की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, और इस समुद्र जो है समुद्र देव हमारे लिए कुछ रास्ता बनाएंगे। लेकिन समुद्र देव जो है हम देखते हैं कि वो अपने ही कुछ घमंड में थे, तो राम भगवान बिल्कुल क्रोधित हो गए थे, तो उनके क्रोध से तो बिल्कुल समुद्र का पानी गर्म हो गया, लेकिन उन्होंने अपना थोड़ा बहुत क्रोध जो है कम किया। तो ऐसे यहाँ उल्लेख आता है कि उनके क्रोध से सारे देवता, ऐसे भी महा इसमें श्रीमद् भागवतम में कपिल देव अपने माँ को बताते मत भयाद वातुई वातोयम, हम बताते कि मुझे डर कर ये सूर्य इंद्र चंद्र वायु यमराज वो क्या करते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि भगवान को डर के जितने भी इस भौतिक जगत में देवताएं हैं वो क्या करते हैं, अपने कार्य में लग जाते हैं। तो इस प्रकार ऐसे देखते हैं कि ये 16 जो है राम भगवान के जो गुणों का वर्णन है वो नारद जी ने किया है वाल्मीकि के शिष्य के यहाँ पर। तो आप लोगों को हमने कौन सा 14 लिस्ट में जाते हैं, उसका हमने स्लाइड नहीं बनाया। ओके 14 बताता हूँ मैं। हाँ उस एक हाँ शरणागत दायक इस मेरे नंबरिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ हरे कृष्णा, किसी को कोई प्रश्न है, टीका है? हाँ पांच दिन किसी को जिज्ञासा प्रश्न? चलो ठीक है। हाँ जी बोल। हाँ राम जो है वो कृष्ण के अवतार हैं। नहीं ऐसे हाँ वो है, ऐसे भक्ति में जो है अगर एक व्यक्ति के इष्ट देव है, लेकिन भगवान के जो है कृष्ण भगवान के विस्तारित रूप है, भगवान की लीला है। तो हम लोग तो सारे जो है त्यौहार मनाते हैं, तो जो भी त्यौहार होता है उस समय जो है उन लीलाओं को श्रवण करना चाहिए। तो ऐसे थोड़े लोगों का यह है कि मत है, अलग लोगों का मत होता है, वो कहते हैं कि जो दास्य भाव में है तो उस व्यक्ति को दूसरे जो है भगवान के साक्य वात्सल्य माधुर्य इनका श्रवण नहीं करना चाहिए। तो ऐसे हमारे किसी आचार्य ने इसके प्रति ऐसे कुछ बताया नहीं है, क्योंकि जो है माधुर्य में बाकी सब रस आ जाते हैं। ऐसे देखेंगे जो शांत रस में सिर्फ एक ही रस है, बाद में आता है दास्य, उसमें शांत और दास्य दोनों है। इस प्रकार जो है माधुर्य में बाकी सब रस धीरे धीरे वो सब प्रकट रहते। हाँ मुरारी जो है वो हनुमान जी है रामलीला में। तो मुरारी हम देखते हैं कि मुरारी के जो है वो उनके इष्ट देव। तो भागवत में भी कपिल देव बताते हैं कि भगवान जो है इष्ट देव स्फूर्ति, इसका मतलब ये है कि भगवान अपने भक्त के इष्ट के अनुसार वो क्या करते हैं, रूप धारण करते हैं। जैसे नारद जी ने अनुरोध किया था जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का, उन्होंने ये रूप देखा था द्वारका में। तो नारद जी ने बताया था कि अगर ये रूप आप धारण करेंगे कलयुग में तो सब जीवों का इससे उद्धार होगा। तो उसी प्रकार ये चैतन्य महाप्रभु का जो महाप्रकाश लीला है, तो महाप्रकाश लीला में हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने उनके पार्षदों के सामने जो भी उनके इष्ट देव हैं तो उनके अनुसार उन्होंने क्या किया कि उस रूप का उन्होंने धारण किया। तो चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत और दूसरे कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें ये दिया है, उल्लेख दिया है कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो है, जो स्वयं कृष्ण भगवान है, कि उन्होंने क्या किया कि अलग अलग रूपों को धारण किया। तो अभी भक्त के इसके अनुसार है, उनका इष्ट के अनुसार है। जैसे कृष्ण भगवान ने एक दो बार यशोदा को क्या दिखाया, ब्रह्मांड रूप भी दिखाया, लेकिन तो एक ऐसे ही, लेकिन यशोदा का तो क्या है, वात्सल्य भाव है। तो ऐसे ब्रजवासी में हम देखते हैं कि ब्रजवासी वो कभी ये नहीं सोचते कि कृष्ण भगवान है, ग्वाल बाल सोचते हैं अरे इसको तो मैं हरा देता हूँ। तो एक ऐसी ब्रजवासियों की एक ऐसी लीला आती है इसमें गोकुल में, जब ये कृष्ण भगवान ने ये किया, ये दो पेड़ों का उद्धार किया था यमला अर्जुन, उसके बाद में गिरिराज जी का धारण किया था। तो गिरिराज जी के रखने के पश्चात तो जितने नंद महाराज के भाई थे उन्होंने एक मीटिंग बुलाया और उन्होंने कहा कि नंद महाराज यशोदा को, अरे आप इसको डांटते हैं बिना मतलब का, आप नहीं जानते कि ये कोई देवता है, दिव्य पुरुष है, इतने सारे अद्भुत कार्य करते हैं। तो नंद महाराज हंसने लगे, अरे ये तो हर आधे घंटे में रोता है, मक्खन चाहिए, और इतने सारे घर में जाके चोरी करता है, ये कैसे देवता हो सकता है। तो हमारे आचार्य बताते कि कृष्ण भगवान तो स्वयं को जो है वो भूल जाते कि वो भगवान है, तो वृंदावन लीला में हम देखते हैं कि भगवान के प्रति ब्रजवासियों का प्रेम इतना, ये प्रेम है इतना, ये प्रेम इतना बड़ा प्रेम है कि भगवान यहाँ अलग अलग लीलाएं करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि कभी कभी जैसे आप देखते हैं कि जब भी कालिया के फण में थे भगवान, तो जब भी कृष्ण भगवान ने देखा अभी सब मूर्छित होके प्राण त्यागने वाले हैं, तो कृष्ण भगवान जो है कालिया के फण से बाहर आ गए। तो बहुत सारे ऐसे लीला है, वृंदावन की लीला है, तो वहाँ उन लीलाओं में कृष्ण भगवान कभी वो अपना शक्ति वो दिखाते नहीं, सबको ये लगता है कि ये हमारे ऊपर ही आश्रित है। तो ये कुछ भगवान के कुछ विशेष लीला है, वृंदावन की लीला है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, श्री कृपा की, राम नवमी महामहोत्सव की। हरे कृष्ण।